हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। पीछे से गोली चलने की आवाज़ सुनकर वे सभी घबरा गए। जिस आदमी के हाथ में गोली लगी थी उसके हाथ से खून निकलने लगा। वे शायद समझ गए थे कि कौन है, इसलिए सभी लुटेरे बिना रुके अपनी बाइक पर बैठकर भाग गए। लेकिन तभी पीछे से कुछ और गोलियां चलने की आवाज़ आई। ऋषभ और समर जमीन पर गिरे हुए थे, क्योंकि जाने से पहले उन लोगों ने उन्हें धक्का दे दिया था। ऋषभ के हाथ में गहरी चोट लगी हुई थी जिससे लगातार खून निकल रहा था। चाकू के वार से उसकी शर्ट भी कट गई थी और सफ़ेद शर्ट की आस्तीन लाल रंग की हो गई थी। ये देखकर समर का दिमाग खराब हो गया। वो उठकर जल्दी से ऋषभ के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो क्या किया तुमने अपनी बेवकूफ़ी में। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, चुपचाप दे देते उन लोगों को तो कम से कम ये नहीं होता। ऋषभ के हाथ पर लगे कट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जब समर ने उसके हाथ पर स्पर्श किया तो उसके मुंह से एक आह निकली। फिर वो दर्द सहते हुए बोला, नहीं, मैं उन्हें ये ब्रेसलेट नहीं दे सकता। तुम्हें पता है कि मेरी शिविका दी ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पर, और वो भी कस्टमाइज मेरे लिए बनवाकर। कीमत ना सही, लेकिन इसकी इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरी नज़र में। ऋषभ की ये बात सुनकर समर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि ऋषभ जैसा इमोशनलेस दिखने वाला इंसान भी किसी के इमोशंस की इतनी वैल्यू करता है, फिर चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो। वो खुद घायल हो गया था, लेकिन उसने अपनी बहन का गिफ्ट उन लोगों को ले जाने नहीं दिया। पीछे से दौड़कर उन दोनों के पास आते हुए एक आदमी ने जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, भाग गए साले डरपोक, आर यू ओके यंग मैन? और तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या इस रास्ते पर इस तरह के लुटेरे रहते हैं? ऋषभ और समर कार के आगे जमीन पर बैठे हुए थे। वो आवाज़ सुनते ही दोनों ने नज़र उठाकर उस तरफ देखा। एक सामान्य कद काठी का लेकिन तीखे नैन नक्श वाला आदमी था, जिसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर पसीना था। उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होगी। समर को वो अपनी बंदूक वापस पैंट में खोंसते हुए दिखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों ही साफ नजर आ रहे थे। उस आदमी की तरफ देखते हुए समर ने कहा, थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, और हमें सच में नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा भी कोई खतरा है। हमारी तो बस बाई चांस कार खराब हो गई। उस आदमी ने उनका ध्यान कार के अगले पहिए की तरफ करते हुए कहा, बाई चांस नहीं, देखो तुम्हारी कार उन्होंने जानबूझकर पंक्चर की है। ये सब उनका प्लान होता है। उस आदमी की बात सुनकर ऋषभ ने कहा, कार पंक्चर है? ओह शिट, मेरा ध्यान क्यों नहीं गया उस तरफ? ये मेरा हाथ। उसने अपना हाथ जमीन पर रखकर उठने की कोशिश की और उसमें ही उसका हाथ और ज्यादा चोटिल हो गया। उसे दर्द से कराहते हुए सुनकर समर ने उसका हाथ आराम से पकड़ते हुए कहा, ध्यान से ऋषभ, अब क्या अपनी इंजरी और ज्यादा बढ़ाओगे? वहां खड़े आदमी ने भी गहरी आवाज में कहा, बी केयरफुल यंग मैन। इसके बाद उस आदमी और समर ने मिलकर ऋषभ को वहां से उठाया और उसे कार की तरफ ले गए। समर ने कार के पास पहुंचकर उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अगर आप सही समय पर नहीं आते, लेकिन आप यहाँ एक मिनट भी, कहीं आप भी उन्हीं लोगों की तरह नहीं, सॉरी मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। उस आदमी ने समर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चे, मैं समझ सकता हूँ, ऐसे मौके पर तुम्हारा नर्वस होना नॉर्मल है, लेकिन तुम लोग यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? उस आदमी ने ये सवाल पूछते हुए ऋषभ की तरफ भी एक नज़र डाली, लेकिन ऋषभ की नज़र उस आदमी के हाथ पर थी जो अभी भी समर के कंधे पर था। इस बार ऋषभ ने उस आदमी के सवाल का जवाब दिया, हम तो बस अपने घर ही वापस जा रहे थे और फिर रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। हमें तो पता भी नहीं चला कि कार पंक्चर है, लेकिन शायद इसमें कोई और खराबी भी है। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक एक नज़र ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, ज्यादा चोट आई है शायद तुम्हें, चलो मैं डॉक्टर के यहाँ ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। वैसे इस वक्त तो सिर्फ हॉस्पिटल ही ओपन होगा, 24 आवर इमरजेंसी वाला, बाकी कोई क्लिनिक तो नहीं खुला होगा। इतना बोलते हुए वो आदमी वहाँ से आगे बढ़ गया। ऋषभ ने फिर वही सवाल दोहराया, लेकिन आपने बताया नहीं आप हैं कौन? उस आदमी ने अपनी जगह पर रुककर पीछे देखते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा नाम है जय अरोरा, मुझ पर भरोसा कर सकते हो तुम दोनों। उस आदमी ने जैसे ही एक पुलिस वाले के रूप में अपना परिचय दिया, समर की घबराहट तुरंत दूर हो गई। वो थोड़ा आगे आते हुए बोला, थैंक यू सो मच सर, वो बस आप ऐसे कपड़ों में थे ना, इसलिए ही हम आपको पहचान नहीं पाए, बट आपने हमारी बहुत हेल्प की। समर को एक्साइटेड देखकर जय ने उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। ऋषभ ने भी समर के पीछे ही आने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने हाथ के कट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसके मुंह से एक आह निकली, ये मेरा हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, क्या करूं मैं। ऋषभ के दर्द से कराहने की आवाज सुनकर समर तुरंत पीछे मुड़ा और ऋषभ के पास आकर उसे पकड़ते हुए बोला, हाँ माना कि तुम्हारा वो ब्रेसलेट इम्पोर्टेंट था, लेकिन जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं होता है ना कुछ भी। पता नहीं क्या जरूरत थी तुम्हें उन लोगों से उलझने की। देखो अब कितना ब्लड निकल गया है इस कट से, काफी डीप है शायद कट। चलो हॉस्पिटल ही चलते हैं इंस्पेक्टर सर के साथ। दर्द की वजह से ऋषभ का मुंह बना हुआ था, इसलिए समर की बात सुनकर उसने सिर्फ हल्के से हाँ में अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन दोनों के पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसके अलावा समर की उसकी फिक्र उसे अच्छा महसूस करा रही थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी जय उन दोनों को वहाँ छोड़कर अपनी जीप लेने के लिए चला गया। कुछ सेकंड के बाद जय अपनी जीप लेकर आ गया। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसकी जीप एकदम टिपिकल पुलिस जीप की तरह थी, लेकिन पीछे से ओपन थी और आगे सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की जगह थी, इसलिए ऋषभ और समर दोनों पीछे बैठ गए। जय ने कुछ नहीं कहा और उन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में ड्राइव करते हुए जय ने मिरर में देखकर पीछे बैठे उन दोनों से पूछा, तुम दोनों दोस्त हो या फिर भाई। ऋषभ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या करना है आपको, कोई भी रिलेशन हो हमारा। इंस्पेक्टर जय ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, कैजुअली पूछ रहा हूँ, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, ज्यादा गुस्सा करोगे ना तो चोट में और भी ज्यादा दर्द होगा। जय की बात सुनकर समर ने ऋषभ को डांटते हुए बोला, सच में चुप करो ऋषभ, एक तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं और तुम हो कि सर, हम दोस्त हैं और काइंड ऑफ रिलेटिव्स भी। एक्चुअली मेरे भाई की शादी इनकी बड़ी बहन से होने वाली है। इस बार जय ने उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा, अच्छा तो रात के इस वक्त अपने भाई बहन की शादी से वापस लौट रहे हो क्या, वो भी दोनों एक साथ। ऋषभ के कुछ बोलने से पहले ही समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, एक्चुअली हम क्लब में मिले थे आज, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था और ये अपने। जय के इतने सारे सवालों को सुनकर ऋषभ का मुंह बन गया और वो शिकायती लहजे में बोला, कुछ ज्यादा ही इंक्वायरी कर रहे हैं आप, तो हमारे भूल रहे हैं शायद, क्रिमिनल वो लोग थे जिन्होंने हम पर अटैक किया, हम नहीं, हम तो खुद ही विक्टिम हैं। जय ने बहुत लापरवाही से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा,
अब देखो विक्टिम हो या फिर क्रिमिनल, हम पुलिस वालों का तो काम ही होता है इंक्वायरी करना, और वैसे भी मैं उस जगह का इंचार्ज हूँ, मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही वो केस मिला है, इसलिए मैं उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वहाँ पर घूमता रहता हूँ, क्योंकि डेली ही वो लोग किसी न किसी पर अटैक करते हैं। मैं उनमें से दो को पकड़ भी चुका हूँ, लेकिन बाकी पूरी गैंग काफ़ी तेज है और मेरे हाथ नहीं लग रही। जय की बात सुनकर समर थोड़ा घबराता हुआ बोला, और आज हम लोग फंस गए उनके झांसे में, कितना स्कैरी था ना वो सब, मुझे तो अब तक डर लग रहा है, और ऋषभ को तो चोट भी लग गई इतनी ज्यादा। जो कुछ भी आज उनके साथ हुआ वो सब सोचकर ही समर के माथे पर पसीना आ रहा था। भले ही अब वे दोनों सेफ थे और वापस शहर में भी आ गए थे, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें वो भूल नहीं पा रहा था। इसके अलावा ऋषभ के हाथ में लगा गहरा कट जिससे खून निकल रहा था उसे भी चिंता में डाल रहा था। उसने अपना रुमाल निकालकर उसकी चोट पर बांध दिया, क्योंकि फिलहाल उसे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। समर जब उसकी चोट पर अपना रुमाल बांध रहा था, तब ऋषभ बहुत ही प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। समर को अपनी केयर करता हुआ देख उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद जय ने एक हॉस्पिटल के बाहर अपनी जीप रोकी और कहा, आ गया हॉस्पिटल, जाओ तुम लोग, और कोई ज़रूरत हो तो मेरे नंबर नोट कर लो। समर ने उसे बताया, लेकिन कैसे, हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, वो लुटेरे हमारा मोबाइल फ़ोन भी ले गए और सारे पैसे भी। उनकी बात सुनकर जय बोला, अच्छा तो कल पुलिस स्टेशन आकर तुम लोग कंप्लेन लिखवा देना, अगर सामान वापस मिला तो मैं तुम लोगों को कांटेक्ट करूँगा, और रही बात पैसों की तो तुम अभी जाकर डॉक्टर अविनाश से मिलना और उन्हें मेरा नाम बता देना, वे पहले तुम्हारा इलाज कर देंगे और पैसे तुम लोग बाद में दे देना उन्हें। समर ने एक बार फिर से उसे थैंक यू कहा।
थैंक यू सो मच सर, यू हेल्प्ड सो मच,
जय ने आराम से कहा। ये तो मेरा काम है समर, जाओ और अपने दोस्त का ख्याल रखो, अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। जय की बात सुनकर समर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और ऋषभ को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उन दोनों के हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद जय ने अपनी जीप स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। हॉस्पिटल के अंदर आते ही ऋषभ ने रिसेप्शन से फ़ोन कॉल करने के लिए पूछा तो समर ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त रात के 3 बज रहे थे और उसने समझाया कि इस वक्त किसी को भी परेशान करना ठीक नहीं है और ऐसी सिचुएशन फ़ोन पर समझा भी नहीं पाओगे, तो ऋषभ उसकी बात मान गया। क्रमशः